लाइफ केयर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर फैज़ वापस दुबई आ चुका था। उसके कमर के ऊपर का हिस्सा अब ठीक हो चुका था, जबकि कमर के नीचे का हिस्सा अभी भी पैरालाइज था। वो अपने कमरे में व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके हाथ में आयु की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स थीं। फैज़ जानता था कि आयु प्रेग्नेंट है और वही पता लगने के बाद वो वापस दुबई आ गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। फैज़ ने सर्द आवाज में कहा, तो हमारे इतना समझाने के बावजूद आप उसके करीब गईं? हम आपकी इस गलती को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इस गलती की सज़ा आपको भुगतनी होगी। जिस बच्चे को आप पेट में लेकर घूम रही हैं, उसी बच्चे के ज़रिए हम आपको हासिल करेंगे, डॉक्टर ओबेरॉय। 9 महीने, एग्जैक्टली 9 महीने का टाइम है आपके पास। इतने टाइम तक आपको आरफ खुराना और अपने बच्चे के साथ जितनी खुशियाँ मनानी है मना लीजिए, फिर आपको चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, आपको हमारे पास ही आना होगा। इन 9 महीनों के लिए हम आपको पूरी तरह से फ्री करते हैं। बोलते हुए फैज़ ने रिपोर्ट को अपने हाथ से पूरी तरह क्रश कर दिया और फिर वहां पड़े डस्टबिन की तरफ फेंक दिया। आयु आरफ के साथ घर आ चुकी थी। उसे कैसे भी करके इन 2 महीनों में आरफ से अपनी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखना था। घर आते ही आयु ने आरफ को रूम में सेटल किया और फिर बाहर जाने लगी। तभी आरफ ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। आरफ ने आयु को अपने करीब करते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि तुमने मुझे मिस किया और अब यहाँ आते ही पीछा छुड़ा कर जा रही हो। वो बात नहीं है आरव, मुझे दादी से भी मिलना है, आयु ने आरव को टालने के लिए कहा। जब घर पर आए थे तब दादी सो रही थी, उन्हें भी तो बताना है कि हम आ गए हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। कम ऑन मिसेस खुराना, पिछले 10 दिनों से रेस्ट ही कर रहा हूँ, अब मुझे काम भी करना है और तुम्हें भी अच्छे से टाइम देना है, आरव ने मुस्कुराकर कहा और फिर आयु के होठों की तरफ अपने होठ बढ़ाने लगा। तभी आयु एकदम से पीछे हो गई। नहीं आरव, अभी नहीं, तुम्हें खुद को पूरे 1 महीने का टाइम देना होगा। तुम्हारे पैर में भी चोट लगी हुई है, इन सब के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, आयु ने सख्त शब्दों में कहा, तो आरव मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। आयु ने आरव को आगे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वो जल्दी से बोली, मैं दादी को बताकर आती हूँ, कहकर आयु वहां से बाहर चली गई। आयु के जाने के बाद आरव धीरे से बड़बड़ाकर बोला, पहले मुझे तुम्हारे डॉक्टर होने पर प्राउड होता था, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है। किसी और प्रोफेशन में नहीं हो सकती थी क्या? जब देखो वाइफ कम डॉक्टर की तरह ज्यादा रिएक्ट करती हो। आरव आंख बंद करके लेट गया। वहीं आयु गौरवी जी के पास जा रही थी। उसने नीचे की तरफ जाते हुए धीरे से कहा, आज तो मैंने आरव को रोक लिया, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा। वो बहुत स्मार्ट है, उसे पता चल जाता है। बस जैसे तैसे करके 2 महीने निकल जाएं और सब कुछ नॉर्मल निकले, उसके बाद मैं खुद आरव को इसके बारे में बता दूंगी। आयु गौरवी जी के पास आई और उन्हें आरव के घर आने के बारे में बताया। उसके बाद गौरवी जी और आयु दोनों ही ऊपर आरव के पास चली गई थीं। आरव के डिस्चार्ज होने के बाद अब अयान पूरी तरह रिलैक्स था। जब तक आरव हॉस्पिटल में था वो पूरा टाइम वहीं पर रहता था। आज आरव के डिस्चार्ज होते ही उसने खुद के लिए 2 दिन का लीव लिया और फिर घर आ गया। घर आने के बाद अयान ने साक्षी को मिलने का मैसेज किया और फिर तैयार हो रहा था। उसी वक्त छवि सिंघानिया उसके कमरे में आई। अयान को तैयार हुआ देखकर छवि ने पूछा, उसी लड़की से मिलने जा रहे हो ना? अयान ने उनकी तरफ देखा और सख्त आवाज में जवाब देते हुए कहा, उनका नाम साक्षी है और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं उनसे प्यार करता हूँ और उनसे शादी करूंगा, तो प्लीज मेरी लव लाइफ में विलन बनने का काम मत कीजिएगा। पर वो एज में तुमसे काफी बड़ी लगती है, ये वही लड़की है ना जो आरव के साथ पढ़ती थी? आरव की फ्रेंड है ना वो साक्षी, दिल्ली के CM मिस्टर निशांत आहूजा की बेटी। साक्षी का नाम जानते ही छवि ने उसे पहचान लिया था। आरव से जुड़े हर शख्स की जानकारी उसे हमेशा से ही थी और साक्षी भी उनमें एक थी। अयान ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ये वही है। अब अगर आपका इंटरोगेशन पूरा हो गया है तो मुझे देर हो रही है, अपनी बात कहकर अयान वहां से जाने लगा। तभी उसे फैज़ का याद आया। अयान वापस छवि की तरफ पलटा और बोला, आपके उस फैज़ खान ने डिस्चार्ज ले लिया है, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ गया है? वापस दुबई ही गया होगा, और कहाँ गया होगा? इतनी आसानी से वो हार मानने वाला है नहीं, फिर वो अचानक दुबई कैसे जा सकता है, वो भी मुझे बिना बताए? छवि को अयान की बात सुनकर हैरानी हो रही थी। उसने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि फैज़ इतनी आसानी से मैदान छोड़कर भाग जाएगा। ये तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है ना, आई होप पिछली बार की तरह आप हमारी हेल्प करेंगी और उस माफिया को हमारी लाइफ से दूर रखेंगी, अयान ने इतना ही कहा और फिर वहां से चला गया। अयान के जाते ही छवि ने तुरंत एजाज खान को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। उसने एजाज खान के लिए कुछ मैसेज छोड़े और फिर अपने काम पर लग गई। वहीं अयान साक्षी को लेने के लिए उसके घर पर गया। वो वहां पहुंचा तो उसने देखा साक्षी की फैमिली वहां पर आई हुई थी, उसके पापा मिस्टर निशांत आहूजा और मॉम पूजा आहूजा। अयान को वहां देखकर निशांत जी ने पूजा जी से धीमी आवाज में कहा, लगता है हमारे पीछे से यहां बहुत कुछ होता है, पहले वो लड़की यहां पर आती थी और अब ये लड़का, देखने में तो काफी शरीफ लग रहा है, अगर ये हमारी साक्षी को पसंद करता है तो मैं तो आज ही इसकी शादी उससे करवा दूं, पर कोई भी लड़का उसका पास जानने के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर ये क्यों होगा? पूजा जी ने जवाब दिया। पहले वो अयान को देखकर एक्साइटेड हो रही थी, तो वहीं अब उनके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। निशान जी ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा और फिर अयान के पास गए। अयान ने अचानक उन्हें अपने सामने देखकर झिझकते हुए कहा, मैं बाद में आ जाऊंगा, शायद साक्षी आज बिजी है। अपनी बात कहकर अयान वहां से जाने के लिए पलटा। तभी निशान जी ने पीछे से सख्त आवाज में कहा, यहीं पर रुको और साक्षी से बात करके जाओ। उनके तेवर देखकर अयान को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो उनकी तरफ मुड़ा और निशान जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लगा। वो उनके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी साक्षी वहां आ गई। साक्षी का चेहरा अयान की तरफ था, तो उसने इशारे से अयान को वहां से जाने के लिए कहा। अयान भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन अब वो निशांत और पूजा के बीच में फंस चुका था। अयान साक्षी के साथ बाहर जाने के लिए उसे लेने के लिए उसके घर पर आया हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से उसे वहां पर साक्षी के मॉम डैड मिल गए। साक्षी अभी अयान को अपने मॉम डैड से मिलवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अयान से मिलकर उनका क्या रिएक्शन होगा। वहीं अयान भी अभी इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं था। अचानक उनके सामने आने पर अयान और साक्षी दोनों ही घबरा गए। मिस्टर निशांत आहूजा ने अयान को अंदर आने के लिए कहा। अयान अभी भी वहीं खड़ा था, उसकी नजरें पीछे खड़ी साक्षी पर थीं। अयान की नजरों को फॉलो करते हुए मिस्टर आहूजा ने पीछे देखा और साक्षी से कहा, अपने दोस्त को कहो अंदर आए, अगर ऐसे ही घबराता रहा तो मुझे अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इसने तुम जैसी जिद्दी लड़की को मना कैसे लिया। मिस्टर आहूजा की बात सुनकर साक्षी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी पूजा जी ने कहा, अब तुम इसे अंदर आने का कह रही हो या हम ही इसे लेकर बाहर कहीं चले जाएं?
साक्षी अभी भी चुप थी। मंथन भी वहीं पर था और उनकी आवाज सुनकर वो बाहर आ गया था। साक्षी के बजाय मंथन ने जवाब देते हुए कहा, मॉम ये डॉक्टर अयान सिंघानिया है, साक्षी दी इसे डेट कर रही हैं। अंदर आ जाओ अयान, इससे पहले कि मेरे घर वाले और उल्टे सीधे सवाल पूछें, साक्षी ने हल्का चिढ़ते हुए कहा। पहले जो डिनर अयान और साक्षी ने अपने लिए प्लान किया था, वहीं अभी एक फैमिली डिनर में बदल चुका था। अयान और साक्षी साथ में बैठे हुए थे, जबकि बाकी की फैमिली उनके सामने। अयान कुछ नहीं खा रहा था, क्योंकि वो इस वक्त आहूजा फैमिली के सवालों के जवाब देने में लगा था। सबसे पहले मिस्टर आहूजा ने कहा, कब से जानते हो तुम साक्षी को? तुम उम्र में इससे छोटे लग रहे हो, क्या सच में छोटे हो क्या? हाँ शायद 3 साल, पर क्या फर्क पड़ता है, प्यार कोई उम्र देखकर थोड़ी ना करता है, अयान ने सीधे सीधे जवाब दिया। अब वो भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, इसलिए बिना डरे उनके हर सवाल का जवाब दिए जा रहा था। अयान का कॉन्फिडेंस देखकर पूजा जी ने उसे कुछ भी ना छुपाते हुए सीधे सीधे कहा, साक्षी की एक 6 साल की बेटी है, इसने उसे नहीं पाला है, लेकिन तुम्हें सच का पता होना चाहिए, फ्यूचर में क्या तुम उस लड़की की जिम्मेदारी उठा सकते हो? मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हो, साक्षी ने उन्हें डांटते हुए कहा। साक्षी की बात का जवाब देते हुए मिस्टर आहूजा बोले, अपनी मॉम को कुछ मत कहो, हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसी बहाने पता तो चले कि ये लड़का क्या सोचता है या इसे तुम्हारे बारे में सब सच पता है भी या नहीं। साक्षी उन्हें आगे बोलने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अयान ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर साक्षी कम्फर्टेबल है तो मैं उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं भी साक्षी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये तैयार ही नहीं है। अच्छा हुआ आपको पता चल गया, तो प्लीज आप इन्हें मनाइए ना। अयान साक्षी का साथ देने के बजाय उल्टा उसके मॉम डैड से ही हेल्प मांग रहा था, ये देखकर उसने सिर पकड़ लिया। वो कुछ कहते उसने पहले मंथन बीच में बोल पड़ा, अगर मेरी दी को टाइम चाहिए तो तुम्हें उन्हें टाइम देना होगा। अयान लाचारी से मंथन की तरफ देख रहा था। तभी पूजा जी बीच में बोली, हमें तुम पसंद हो, डॉक्टर हो तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे, मैं साक्षी को समझाऊंगी, तब तक तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हो। बोलते हुए उन्होंने निशांत जी की तरफ देखा, उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट पर पूजा जी की बात पर हामी भरी। अयान को साक्षी की फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। साक्षी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर अपनी फैमिली से कहा, आपने मेरे बारे में तो अयान को सब कुछ बता दिया, पर इसके बारे में भी जान लीजिए, अयान आरफ का छोटा भाई है, आरफ की मॉम ने दूसरी शादी की थी तो वो इसे अपने साथ लेकर चली गई थी। अयान को लगा कि आरफ का नाम सुनकर साक्षी की फैमिली और खुश होंगी, लेकिन वहां कुछ उल्टा ही हुआ। मिस्टर निशांत आहूजा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम उस घमंडी आरफ खुराना के भाई हो? तुम उसके जैसे तो नहीं हो ना? आप मेरे भाई के बारे में ये क्या बोल रहे हो? वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, पर मुझे उनके जैसा ही बनना है, ही इज माई आइडियल, अयान ने जवाब दिया। अयान को अब पता चल गया था कि आरफ की मिस्टर आहूजा के सामने कुछ खास इमेज नहीं थी, वो आरफ के बारे में कुछ और बात करता तो मामला बिगड़ सकता था, इसलिए उसने सब ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज आप अब साक्षी के रिश्ते के लिए मना मत कर दीजिएगा, मामला मुश्किल लगता है, पर तुम अच्छे इंसान लगते हो, मेरी बेटी को खुश रखोगे तो ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर आहूजा बोले। पब्लिक में उनकी इमेज अलग थी और अपनी फैमिली के सामने अलग। अयान भी हैरान था कि दिल्ली के सीएम जो सबके सामने सख्त बनकर रहते थे, वो अपनी निजी जिंदगी में हंसी मजाक करने वाले आम इंसान थे। लगभग 2 महीने बाद होटल साज को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। वैसे तो वहां होने वाला हर सेलिब्रेशन खास होता था, लेकिन आज वहां के ओनर आरफ खुराना के भाई की इंगेजमेंट होने की वजह से वहां खास तैयारी की गई थी। आज साक्षी और अयान की इंगेजमेंट थी। साक्षी शादी के लिए तो नहीं, लेकिन सगाई के लिए मान गई थी। वहीं अयान ने छवि को भी मना लिया था। सगाई शाम को होने वाली थी, लेकिन सारे गेस्ट वहीं पर रुके हुए थे। आरफ भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। आयु अपने रूम में थी और जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज कर रही थी। इन दो महीनों में उसने जैसे तैसे आरफ से अपनी प्रेगनेंसी छुपाना मैनेज कर दिया था, लेकिन उसका वेट थोड़ा बढ़ गया था। इस वजह से वो आरफ के सामने चेंज नहीं करना चाहती थी। आयु ने जानबूझकर अपने लिए लूज ड्रेस मंगवाया था ताकि आरफ को शक ना हो। आयु ने गोल्डन कलर का अनारकली सूट पहना था जो ऊपर से टाइट और कमर से काफी लूज था। आयु ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, थैंक गॉड पता नहीं चल रहा, वरना आरफ को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में वो नोटिस करने लगा है, वेट भी बढ़ रहा है। पता नहीं मुझे एनी टाइम भूख क्यों लगी रहती है। आयु वहां खुद से बात कर ही रही थी कि तभी आरव वहां आ गया। अंदर आते ही आरव आयु को गौर से देखने लगा। आयु कुछ पूछती उससे पहले आरव ने कहा, मैंने नोटिस किया है आजकल तुम ज्यादा खाना खाती हो और थोड़ी चबी भी हो गई हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम तो अपने वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती थी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अब तक आरव ने आयु से इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन आज उसने सीधे सीधे पूछ लिया था। आरव के सवालों ने आयु का मुंह बंद कर दिया था।